बुलाए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, हम तो पहुंच गए हैं आज हमारी पढ़ाई नंबर 5, जो परमेश्वर की युगों की योजना का दूसरा और अंतिम हिस्सा, जिसमें हम देखेंगे दूसरा संसार और तीसरा संसार। तो पिछली क्लास में तो हमने देखा एक परमेश्वर की युगों की योजना के परमेश्वर योजना बनाता है, परमेश्वर योजना के अनुसार चलता है, शांतिदायक परमेश्वर है। परमेश्वर ने 3 संसारों की योजना बनाई। तो पहले संसार के बारे में तो हमने पढ़ लिया, पहले संसार में जो कुछ हुआ वो देखा, और पहले संसार में बचने वाले 8 लोग, नूह और उसका परिवार देखा। तो आज हम बाढ़ के बाद आगे बढ़ेंगे कि बाढ़ के बाद आगे क्या हुआ, क्योंकि दूसरा संसार उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन पहला संसार खत्म हुआ। पहला संसार खत्म हुआ, दूसरा संसार शुरू हुआ। तो ये है ओवरलैपिंग, वो तस्वीर जो थी, यहाँ से दूसरा संसार शुरू हो रहा है। ठीक है, तो उसमें से पहले संसार में से बचने वाले कितने लोग थे? 8। नूह, उसकी पत्नी, 3 बेटे और उनकी पत्नियां। तो 1 साल और 10 दिन वो रहे कश्ती में, मतलब के 375 दिन पानी सूखने के लिए लगे, क्योंकि इतना पानी 40 दिन 40 रात, बारिश नहीं बोल सकते, एक तरह का आकाश की खिड़कियां, वो जो परमेश्वर ने तह लगाई थी ना पानी की, वो खुल गई। उसके बाद से धरती पे जो तापमान था वो भी बढ़ गया। पहले क्या होता था, जब वो परमेश्वर ने पहले संसार में वो लगाई थी सतह पानी की धरती के इर्द गिर्द, तो सूर्य की जब किरणें आती थी तो पानी से गुजर के आती थी, तो इतनी गर्मी नहीं थी। लेकिन जब वो निकल गया तो सूर्य की किरणें डायरेक्टली जमीन पे आने लगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो उसको सूखने के लिए उतने पानी को, 40 दिन 40 रात का पानी जो था बारिश का, 1 साल और 10 दिन लगे। ये तो पढ़ लो आप, उत्पत्ति 7:11 और 8:14।
जब नूह की आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब छोटे फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए।
कौन सी आयु?
600वें
बड़े के कितने दिन?
17वां दिन पे।
17वां दिन, अभी 8:14 पढ़ लो। सत्रह और दस ऊपर हो गए, 1 साल और 10 दिन, 375 दिन लगे। ठीक है, अभी हम दूसरे संसार की बात करने जा रहे हैं। दूसरा संसार के 3 बंटवारे किए परमेश्वर ने, 3 भाग में बांटा, 3 युगों में बांटा। दूसरे संसार को परमेश्वर ने 3 युगों में बांटा, एक तो बुजुर्गों का युग, एक यहूदियों का युग और एक सुषुमाचार का युग। 3 बंटवारे दूसरे संसार में, 3 युग, बुजुर्गों का युग, यहूदियों का युग, सुषुमाचार का युग। ये देखिए, ये देखिए, बुजुर्गों का युग डी, यहूदियों का युग ई और सुषुमाचार का युग एफ। ये दूसरे संसार के अंदर 3 युग। ये बुजुर्गों का युग क्या था? बुजुर्गों के युग में परमेश्वर हर किसी से बात नहीं करता था। बुजुर्गों के युग में परमेश्वर ने सिर्फ 4 लोगों से बात की, एक तो नूह, उसके बाद इब्राहिम, उसके बाद इसाक और उसके बाद याकूब। याकूब की मौत के साथ बुजुर्गों का युग खत्म हो गया। परमेश्वर की बातचीत किससे हो गई फिर? याकूब के 12 पुत्रों से, और याकूब के 12 पुत्रों का नाम क्या था? इज़राइल। इज़राइल जो था वो 12 घरानों से बना, ठीक है, वो याकूब के 12 पुत्र। ठीक है। तो फिर परमेश्वर ने सारी डीलिंग जो किसके साथ शुरू कर दी, यहूदियों के साथ शुरू कर दी, ठीक है। तो वो था यहूदी युग, जब परमेश्वर सिर्फ इज़राइल से बात करता था। लेकिन वो भी समय गुजरा, इज़राइल का मसीहा आया, परमेश्वर का इकलौता पुत्र आया, लेकिन नहीं पहचाना। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन बोले थे, जो मत्ती 23:38-39 में, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता, उसके साथ खत्म हुआ यहूदी युग। फिर शुरू हुआ कौन सा युग? सुसमाचार युग। अब ये युग किसके लिए था? अन्य जाति के लिए। दो ही जातियां, एक तो यहूदी, एक अन्य जाति। हम सब अन्य जाति में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गहराई में मैं अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये तीन बंटवारे हैं हम। लेकिन शुरू करते हैं बाढ़ के अंत से, जब नूहा और उसका परिवार बाहर आता है कश्ती से, ठीक है। और अभी हम कौन से संसार में हैं? दूसरे संसार में। दूसरे संसार में से, पहले संसार में से दूसरे संसार में आने वाले कितने लोग थे? तीन, मतलब आठ लोग। और नूहा के किसी तीन पुत्रों से ये सारी धरती बसी है।
बोल सकता हूँ?
जी जी बोलिए।
लेकिन उसने तो वो भी नाव में जब बताया था, नूह को बोला था कि तेरे अलावा दो दो जोड़ियां, सारे लोग आए थे, वो तो बहुत सारे लोग
थोड़ी थे,
उसमें जानवर भी थे,
जानवर थे, सिर्फ जो इंसान थे उसमें आठ थे, बाकी तो जोड़े जो थे वो सृष्टि के जोड़े थे, ठीक है। लेकिन बचने वाले इंसान कौन थे? सिर्फ आठ, ठीक है। अभी इन तीनों के, नूहा के तीनों पुत्रों में से बसी है सारी धरती। हम कौन सी संतान है ये देखना है, ठीक है। क्योंकि दूसरा संसार शुरू हो रहा है तीन लोगों से, नूहा के तीन पुत्रों से, है ना। नूहा के तीन पुत्र जापित, शेम और हाम, उससे ही सारी धरती का विस्तार हुआ है। लेकिन लोगों को नहीं पता है, नहीं जानते हैं वो कैसे। आज हम पढ़ेंगे क्या क्या है। तो पहले हम पढ़ते हैं नूहा की वंशवली, ये बात पढ़ लो, नूहा 9:18-19 में, सारी धरती, उत्पत्ति 9:18-19।
नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे सेम, हाम और यपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के तीन पुत्र यही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया।
देखो इन्हीं का वंश फैल गया। हम कौन से वंश के हैं वो देखते हैं, अभी देखेंगे कैसे
इन तीनों में से किसके हैं।
यस, तो सारी मनुष्य जाति,
नूह की 18
जितनी भी इस धरती पे मनुष्य जाति है वो सारी नूहा की संतान से है। अभी नूहा का पुत्र बड़ा, छोटा और मिडल वाला कौन सा था, पता है आपको? शेम, हाम और यापेत। इसमें लग रहा है आपको शेम बड़ा है, हाम बीच वाला है और यापेत छोटा है, ये लग रहा है ना, यही हाँ। उत्पत्ति 5:32 में भी यही लग रहा है, लेकिन क्या ये सही ऑर्डर है? कई बार परमेश्वर वचन को ऐसे भी करता है, उल्टा पुल्टा भी कर देता है। तो उत्पत्ति 10:21 में पढ़ लो,
शेम तो जो सब एवेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो यपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए।
नहीं नहीं, एक्चुअली हिंदी में यहाँ पे प्रॉब्लम है, इंग्लिश में पता क्या लिखा है, अनटू शेम ऑल्सो द फादर ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ एवर द ब्रदर ऑफ जैपथ द एल्डर। सबसे बड़ा जो है वो है जैपथ,
यपेत सबसे बड़ा है
जी, और मिडल वाला है शेम, और सबसे छोटा है हाम जो कनान का पिता।
सेकंड नंबर सेम है,
हाँ,
यपेत सबसे बड़ा, सेकंड नंबर सेम और हाम सबसे छोटा,
सबसे छोटा। ये बात उत्पत्ति 9:24 में पढ़ लो,
उत्पत्ति 9:24
जी,
9:24
में जब नूह का नशा उतर गया तो उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है।
देखो उसके छोटे पुत्र ने, ये किसने किया था? हाम ने, जिसको कनान का पिता बोला, जिसको श्राप दिया था नूहा ने, श्रापित ठहरा दिया। देख लो, तो सबसे छोटा था हाम, सबसे बड़ा था जैपित, और मिडल वाला था शेम। अभी इन तीनों के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। जो सबसे बड़ा है जैपित, उत्पत्ति 9:27 में पढ़ो।
9:27
जी,
परमेश्वर यापित के वंश को फैलाए और वह सेम के तंबू में बसे और कनान उसका दास हो।
तो ये शेम के, शेम भी इसका दास हो और कनान भी इसका दास हो। ऐसा धरती पे ऐसी कौन सी जाति है जो जिन्होंने राज किया? गोरे लोग, गोरे लोग, ठीक है, जिन्होंने एशिया को भी अपना गुलाम बनाया और हाम कनान को भी अपना गुलाम बनाया। तो ये दोनों ही उसके क्या थे? दास थे। और वो कौन है? गोरे लोग, जिनको कॉजियन रेस बोलते हैं। तो जैपित पिता है उनका, जो इस धरती के ज्यादातर राजा, यूरोप, अमेरिका, ये जैपित की संतान है, बड़े की, सबसे जो राज्य करते हैं धरती पे, ठीक है। बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियंस सारे इधर से ही आ रहे हैं। देख लो, इंग्लैंड इतना सा, लेकिन 80 देशों पे राज किया इंग्लैंड ने, इतना सा था। तो जैपित की संतान है ये गोरे लोग। उसके बाद आता है शेम। शेम क्या है? 26 में पढ़ लो, 9:26 में।
9:26
जी,
फिर उसने कहा, सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान सेम का दास हो।
तो ये कौन है शेम का परमेश्वर जो धन्य है? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? यरूशलम, इज़राइल, जो कहाँ है? एशिया में है, ठीक है, जो एशिया में है। सो ये जो मेनली जो ये जो शेम वाले लोग हैं, ये पता कौन है? मोनोक्लाइड रेस, जैसे चाइना, जापान, कोरिया, छोटी छोटी आंखें और वैसे फीचर्स, ठीक है। तो ये शेम है एशिया का एरिया, और ये जो जूद सबसे ज्यादा धर्म भी इसी एरिया में ही है, जूदा, बुद्ध, हिंदू, जैन, क्रिश्चियनिटी, सब इसी में ही है, यहूदी, सब इसी में ही है ना। तीसरा, जो इंडिया की बात करेंगे, इंडिया जो है ना, इंडिया ना तो प्योरली जैपित है ना प्योरली शेम है, इंडिया मिक्स है, वो हम बाद में बात करेंगे। तीसरा जो है वो है हाम। हाम क्या था? हाम के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जो सबसे छोटा पुत्र था। नूहा, उत्पत्ति 9:20-21 में, उत्पत्ति 9:20-21।
नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया।
बस, तो ये क्या हुआ नूहा को? क्या नूहा ने जानबूझ के शराब पी? क्या नूहा मतवाला कैसे हो गया? एक्चुअली नूहा क्या करता था? नूहा का जो अंगूर के किसानी करता था। तो नूहा क्या करता था पहले संसार में? जूस निकालता था, और उस वक्त फ्रिज की जरूरत नहीं, मैंने बोला ना, उस वक्त पानी की सतह थी, तो धरती पे टेम्परेचर क्या था? कम था, इतना गर्म नहीं था। तो क्या करता था? जूस बना लेता था, बहुत देर दिन तक पीता रहता था। जब दूसरे संसार में आया, टेम्परेचर बढ़ गया, नूहा को ये पता नहीं था। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया? धीरे धीरे वो अंगूर का जूस क्या बन गया? मैं बन गई, उसमें वो ज्यादा वो प्योर हो गया, ठीक है। तो एक दिन पी लिया और नशे में हो गया, मतवाला हो गया, और अपने टेंट में नंगा हो गया। टेंट में क्या हो गया? नंगा हो गया। फिर क्या हुआ ये पढ़ते हैं, उत्पत्ति 9:22।
तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, पर बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब सेम और यापित दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधे पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढक दिया।
देखो तो हाम ने क्या देखा, अपने पिता को
नंगा
देखा और अपने भाइयों को जाके बताया, और जो भाई थे उन्होंने ऐसे देखा नहीं, चद्दर लेके आए और ढक दिया। जब नूह अगले दिन उठा, उठते सारी क्या बोलता है 24 और 25 में पढ़ो।
जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया।
अब जान लिया नूह ने उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, और उठते सारी जब जान लिया क्या बोलता है पढ़ लो।
इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो,
श्रापित हो कनान। ऐसा क्या, क्यों नूह ने कनान को श्राप दे दिया उठते सारी? हाम ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से नूह, जब पता चला नूह को, नूह धर्मी इंसान, नूह को बाइबल में क्या बोला, धर्मी, उससे सारी शराब बोल दिया, तू और तेरी तेरा वंश शराब पर ठहरे। क्या किया, ये अन्याय नहीं है? इतना क्रोध नूह को के उससे सारी इतना वो कर दिया। एक्चुअल में क्या हुआ था वहां पे, नूह के जो हाम था उसका छोटा पुत्र जो अभी उसकी संतान पैदा भी नहीं हुई है उसको भी श्रापित कर दिया। ये क्या हुआ, नूह तो धर्मी इंसान था ना, तो नूह को इतना गुस्सा क्यों आया, क्या हुआ था वहां से? हमें याद रखना है कि हाम जो सबसे छोटा, ये जो इसके पुत्र थे, ये कहां से आ रहे थे, पहले संसार से। पहले संसार में क्या होना शुरू हो गया था कि परमेश्वर को इतना गुस्सा आ गया, ये पढ़ लो बात, रोमिया 1:27।
रोमिया 1:27
जी,
यदि पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामक्रोध होकर चलने लगे और पुरुष ने पुरुषों के साथ निर्दर्द काम करके अपने धर्म का ठीक कर पाया।
देखो ये हो रहा था पहले संसार में, काम गंदा काम जो ये देख के आ रहे थे, और नूह के सबसे छोटे पुत्र ने वही काम अपने बाप के साथ किया, नूह के साथ किया, ठीक है, होमोसेक्स किया अपने बाप के साथ, जिसकी वजह से नूह को जब ये सुबह पता चला कि मेरे छोटे बेटे ने मेरे साथ ये किया, उससे सारी क्या बोला, श्रापित। तो ये पता कौन है, ये है नीग्रो, ये है श्रापित जाति, हाम कनान का पिता, कनान का पिता, ठीक है। तो बाल गुंगराले, नाक शेपलेस और ऐसे फीचर्स, मतलब कि श्रापित जाति, जली हुई जिसे बोल सकते ना, इनकी चमड़ी कैसे ब्लैक होती है, तो ये श्रापित जाति है, हाम की संतान है। तो इसलिए जापित गोरेलो, हाम ये जो नीग्रो, और तीसरी जाति है एशियन, ठीक है। तो ये है तीन जातियाँ जिससे सारी धरती पे विस्तार हुआ, सारी धरती का बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो कनान को श्रापित दे दिया, श्रापित है कनान, और तू अपने भाइयों का दास बने, ये पढ़ लो बात।
फिर उसने कहा सेम का परमेश्वर होगा धन्य है, और कनान सेम हम का, सेम का दास हो।
25
इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो, वह अपने भाइयों बंधुओं के दासों का दास हो।
कनान श्रापित हो, भाई बंधुओं के क्या हो,
दासों का दास।
अभी ये भी दास हैं, इसके भाई भी दास हैं, वो किसके दास हैं, ये पढ़ लो रोमिया 6:16।
रोमिया 6:16
जी,
क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है।
तो देख लो ये संसार सारा तो दास है, चाहे जयपित हो चाहे शैम हो, किसका दास है? पाप का दास है। उन दासों का भी तुम क्या हो? दास हो। तो आपको पता हो, अगर सबसे बाद में जो गुलामी से छुटकारा मिला वो तो मिला नीग्रोस को। नीग्रोस को बहुत वो रखा जाता था, घरों में नौकरों की तरह बुरे लोग रखते थे, ठीक है। तो इसलिए ये तीन नूहा की संतान से बसी है सारी धरती। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया, अगर आपको पता हो, नॉर्थ में जो बसने वाले लोग हैं वो उनको क्या बोलते हैं? आर्यन। और साउथ में द्रविडियन। एक्चुअल में इंडिया जो था वो द्रविडियन का था। जो द्रविडियन जो कहाँ सेटल हुए? साउथ में सेटल हुए। आर्यन जो पूर्वी यूरोप से आए थे वो सिंधु घाटी से होते हुए सेटल हुए कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। तो इंडिया जो है तीनों का मिक्स है। इसमें जैपताइट भी है, जैपत के भी हैं गुण, शैम के भी गुण हैं और हाम के भी गुण हैं। आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो हाम का ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। आप पूरब में चले जाओ तो मणिपुर मिजोरम शैम का ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। आप नॉर्थ में आ जाओ तो जैपत का। और इंडिया में ज़्यादा डोमिनेट कौन कर रहा है? जैपेथाइट, ठीक है, जैपेथाइट। इनमें गोरो वाले, मतलब इंडिया मिक्स है पूरा, प्योरली कुछ भी नहीं है। लेकिन नॉर्थ वालों के फीचर्स और साउथ वालों के फीचर्स में बहुत
बिल्कुल अलग है,
फर्क रहता है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया क्या है? पूरा मिक्स है। इंडिया के बारे में जिक्र पढ़ लो, यशाया 2:6-8 तक। दो का 6-8
तुमने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तलमन से चलते और फिलिस्तीनियों के समान सोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं।
आगे पढ़ते जाओ।
उसका देश चांदी और सोने से भरपूर है।
हाँ।
और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश सूरों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत है। उनका देश नोटों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से सवारा है, दंडवत करते हैं।
दंडवत करते हैं। देखो ये कौन है? ये इंडिया है। और कई बार हमें लोग बोलते हैं, अरे तुम लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया। अब मुझे कोई ऐसा बोलता नहीं, अगर मैं उत्तर पता क्या देता हूँ? तुम लोग अपने असली धर्म को भूल गए हो, एक दिन वापस आओगे। एक्चुअल में हम तो, हाँ, तुम तो याकूब के घराने से आ रहे हो। वो वही बोल रहे हैं ना, तुमने अपने याकूब के घराने को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये है तीन पुत्र जिससे चल रही है ये सारी धरती, ठीक है। जैपेथाइट, शेमाइट और हाम, ठीक है। अब बात करेंगे वो तीन दूसरे संसार के तीन युगों की। पहला युग बुजुर्गों का, दूसरा यहूदियों का युग, तीसरा सुसमाचार युग। तो पहला युग बुजुर्गों का युग, पहला बुजुर्ग नूहा और अंतिम बुजुर्ग याकूब। परमेश्वर ने नूहा से वायदा किया। क्या वायदा किया? पढ़ लो उत्पत्ति 9:9-11।
सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बने हुए पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट नहीं होंगे।
तो क्या आपको लगता है ये परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया? परमेश्वर बोलता है प्राणी जल से नष्ट नहीं होंगे, लेकिन आप बोलोगे अभी तो हमारे सामने उत्तराखंड की ताजा ताजा मेमोरीज हैं। लेकिन नोट करने वाली बात है, सब बोला है परमेश्वर ने। ये नहीं बोला था कि बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ आएगी, लेकिन सब प्राणी उससे नष्ट नहीं होंगे। समझ रहे? तो परमेश्वर तो अपने वायदों को पूरा करता है। फिर परमेश्वर ने नूह के बाद बातचीत किससे की? अब्राम, इब्राहिम का नाम अब्राम था। क्या करता था वो? मूर्ति पूजा करता था। परमेश्वर ने बुलाया। नूह का ये दसवां वंश था और आदम का बीसवां वंश इब्राहिम। इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने बात की, ये पढ़ लो योशुआ 24 का 2। ये इधर ही होगा, उधर पांचवा किताब, पांचवी छठी किताब। नहीं नहीं, उत्पत्ति के बाद, गिनती के बाद, लेवे व्यवस्था के बाद। आप ना अभी नेक्स्ट वीक का आपका होमवर्क पता क्या है? आपको पूरा इंडेक्स पढ़ना है। अच्छा, पुराने नियम की किताब कौन सी कहाँ पे है, नए नियम की।
अच्छा, कितने का?
24 का 2।
तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा पराप महानाद के उत्पाद रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे,
मूर्ति पूजा करते थे। परमेश्वर ने इसको बुलाया, नूह अपनी धरती छोड़ और मेरी दिखाई हुई जगह पे जा, मैं तुम्हें बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। उत्पत्ति 12 का 1-3 पढ़ लो।
यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे।
तो ये तो इब्राहिम के जीवन के बारे में तो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, लेकिन इब्राहिम के मरने के बाद परमेश्वर ने इसहाक से भी बोला, याकूब से भी। इसीलिए कई बार हम भी बोलते प्रार्थना में इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर। तो चार बुजुर्ग थे, वो बुजुर्गों का युग था जब परमेश्वर किसी और से बात नहीं करता था, सिर्फ गिने चुने लोगों से बात करता था। वो थे चार, नूह, इब्राहिम, इसहाक और याकूब। याकूब का नाम पड़ा इज़राइल। याकूब का नाम पड़ा क्या? इज़राइल। ये थे चार बुजुर्ग। याकूब की मृत्यु के साथ बुजुर्गों का युग हुआ खत्म, अगला युग शुरू। यहाँ पे एक युग खत्म होगा, वहां पे दूसरा युग शुरू होगा, लेकिन ये दूसरा संसार अभी चल रहा है। तो जो दूसरा युग था उसका नाम क्या है? यहूदी युग। यहूदी युग में परमेश्वर ने याकूब की मृत्यु के बाद याकूब के पूरे परिवार के साथ डीलिंग शुरू कर दी। ये पढ़ लो अमोस 3 का 2।
पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा।
तो पृथ्वी के सारे घरानों में से मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। ये किससे बात कर रहा है? परमेश्वर इज़राइल। इज़राइल यहूदी युग के दौरान परमेश्वर ने इसराइल को बहुत सारे तजुर्बे दिए, मिस्र की गुलामी में गए, गुलामी से छुड़ा के लेके आया, बहुत सारे बड़े बड़े तजुर्बे दिए, और इसी दौरान परमेश्वर ने इनको 3600 कानून दिए। सिर्फ 10 कानून नहीं है, 3600 कानून। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों पे लागू होते हैं, अन्य जाति के लिए ये नहीं है, अन्य जाति के लिए वो नहीं है। इसलिए नए नियम में आप देख लो, एक भी जगह आपको उसका रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो पढ़ लो ये बात, 3600 कानून दिए जो लेवी व्यवस्था से लेके अपना व्यवस्था सार तक सब में मिलते हैं। छोटे से छोटा ये एक टॉयलेट जाने का तरीका भी परमेश्वर ने कानून के तौर पे दिया इनको, वो पढ़ लो व्यवस्था सार 23:12-13 व्यवस्था विवरण।
छावनी के बाहर तेरे दिशा फेरने का एक स्थान हुआ करे, और वहीं दिशा फेरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फेरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढाप देना।
परमेश्वर ने यहाँ तक भी कानून दिया इसराइल को, ये देखो कितना परमेश्वर का ध्यान था इसराइल पे। अंत में इसराइल में व्यवस्था के अधीन यहूदी युग में कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह। गलातियां 4:4 पढ़ लो। इसलिए यीशु मसीह को जब वो सामरी औरत आती है कुएं पे, बोलती है हमें वो दे दो, वो बोलता है पुत्रों का खाना कुत्तों के सामने नहीं डालते।
परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो उसी से जन्मा और व्यवस्था के अधीन।
व्यवस्था के अधीन यहूदी युग में पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह सचमुच यहूदियों के लिए कितनी बड़ी आशीष थी कि संसार का बचाने वाला उनके परिवार से, उनके कुल से पैदा हो रहा था। लेकिन उन्होंने इसको नहीं समझा और उसको रिजेक्ट किया, यहाँ तक के उसको सूली पे चढ़ा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर ये शब्द बोले, मत्ती 23:38।
देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है।
70 ईस्वी में इसराइल देश क्या हो गया था पता आपको? हिस्ट्री इसराइल की 70 ईस्वी में इसराइल देश खत्म, कुछ भी नहीं था वहां। किसने कब्जा कर लिया? फिलिस्तीन, सब ने। वापस देश कब बना? दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 में, 14 मई 1948 में वापस इंडिपेंडेंस डे इनका, इन्होंने वापस आए अपनी जमीन हथियाई, आज तक जमीन हथिया रहे हैं। इतना सा इसराइल देश और पूरे अरब की नाक में जम कर रखा है, अमेरिका तक की हिम्मत नहीं कि उसको रोक दे, अमेरिका तक की हिम्मत नहीं। इसराइल का बात जो यूएन है ना, ओबामा के टेबल पे 2 फोन लाइंस हैं, एक तो पूरे संसार के लिए उसको असिस्टेंस के पास जाएगी कॉल, सर को दीजिए फोन, ऐसे जाता है। इसराइल वाले फोन पे इसराइल लिखा हुआ है, डायरेक्टली इसराइल, सीधी कॉल जाती है ओबामा को, इसराइल से कॉल आई है, ओबामा उठाएगा। उसका कारण मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में कि क्या कारण है। लेकिन इसराइल देश ने जब प्रभु यीशु मसीह अपने मसीहा को नहीं पहचाना, तो प्रभु ने क्या बोला? तुम्हारा देश तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। 70 ईस्वी में ये खत्म हो गया था। इन शब्दों के साथ खत्म हुआ यहूदी युग और शुरू हुआ कौन सा युग? सुषमाचार युग। सुषमाचार युग में वो जो बुलावा था वो ट्रांसफर हो गया किसको? अन्य जाति को। तो ये बात पढ़ लो रोमिया 16:25-26। सोलह 16 का 25, 26
अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थित कर सकता है उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छुपा रहा है।
जो सनातन से क्या था?
छुपा रहा है।
भेद का प्रकाश। वो भेद का प्रकाश क्या था? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार। वो रहस्य क्या था? ये पढ़ते हैं एफिसियों 3 का, अफसियों 3 का 5 से लेके 6 तक,
3 का 5-6।
ठीक है। जो अन्य समय में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियां लोग मीरस में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं।
देखो तो ये अन्य जाति के लिए पहले ये बात खुली नहीं थी, लेकिन ये भेद का प्रकाश कब आया? सुसमाचार युग में, जब उनको पता चला अन्य जाति भी प्रभु यीशु मसीह के शरीर में हिस्सेदारी हो सकती है। शरीर में हिस्सेदारी यानी कलीसिया, दे प्रभु यीशु मसीह की शरीर। ठीक है, तो ये रहस्य था प्रभु यीशु मसीह के एक शरीर के बारे में जिसमें यहूदी और यूनानी यानी अन्य जाति दोनों हैं। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह के चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में तो हम आने वाले दिनों में बात करेंगे, लेकिन ये सुसमाचार युग के साथ होगा दूसरे संसार का अंत और तीसरे संसार की शुरुआत। तो जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था, हर एक संसार का एक आकाश है, एक पृथ्वी है, एक आकाश है, एक पृथ्वी है, एक आकाश है, एक पृथ्वी है। वो आकाश क्या है? हवा में आत्मिक राज्य। और पृथ्वी क्या है? चार संगठन। जो अब ये जो दूसरे संसार में जो किसका अधिकार चल रहा है? हवा में शैतान और उसके दूत। ये बदल जाएगा, कौन करेगा राज्य? फिर प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया। हवा में आत्मिक राज वो करेंगे, और ये जो चार संगठन हैं धरती, ये भी बदल जाएगी। तो जब परमेश्वर का न्याय आएगा, जब हम पढ़ते हैं पत्रस में पिछली बार पढ़ा ना कि आग से जलने के लिए क्या रख छोड़ा है दूसरा संसार, किससे जलने के लिए?
आग।
तो वो आग के बारे में हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 3:10। आग का मतलब होता है न्याय, आग चिन्ह है न्याय का।
दूसरा पत्रस 3।
परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़गड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तक बहुत ही त्रस्त होकर सिधर जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे।
पृथ्वी और उस पर के काम, आकाश बड़ी गड़गड़ाहट से क्या हो जाएगा? अभी ये आकाश जो हम देख रहे हैं ये तो नहीं जाएगा ना, पहले संसार में ये गया था, ये और धरती तो ऐसे ही थी ना। जाने वाला क्या है? वो जो तीसरा आकाश। तीसरा आकाश क्या है? शैतान और उसका राज्य खत्म हो जाएगा, और ये धरती पर, इस धरती और इसके काम क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे, आग के साथ जल जाएंगे। अभी इस धरती को हम आग से जला सकते हैं? धरती को आग लग सकती है? लग सकती है। और धरती पे चलने वाले कामों को कैसे जलाया जा सकता है? धरती पे चलने वाले काम कौन कौन से हैं बताइए? धरती पे है धोखा, झूठ, चोरी, मक्कारी, स्वार्थीपन, ये सब अगर जल सकते तो हम एक पेट्रोल पंप लेते और डाल देते और जल जाते, ऐसा होता? तो इस पर से काम का क्या मतलब है कि जो जितने ये काम है, जब परमेश्वर का न्याय आएगा, आग का मतलब पता क्या है? परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय। सफन्या 3:8 पढ़ लो। मलाकी से पहले होगा। मनासी से पहले जकार रहे हैं।
ये खत्म में आ गया। कौन सा?
तीन का आठ।
इस कारण योवा की यह वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने ये ठान लिया है कि जाति जाति के और राज राज के लोगों में लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी।
आग मतलब परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का धार्मिक गुस्सा, परमेश्वर का न्याय बुराई के खिलाफ। किसके खिलाफ?
बुराई के खिलाफ।
ये बुरे जो संगठन है ना, जो धरती पे चल रहे हैं, ये चार संगठन, इनको परमेश्वर क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा, पूरी तरह नाश कर देगा। ये तो बात पढ़ लो कि जब परमेश्वर का न्याय होता है, धरती के लोग धार्मिकता सीखते हैं। पढ़ लो यशाया 26 का 9। यशाया 26 का 9। जी।
रात के समय मैं जी से तेरी ललता करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं।
देखिए, अगर जब परमेश्वर का न्याय अब जली जाना है, तो सीखने वाला कौन रहेगा? तो न्याय का मतलब है आग। आग है चिन्ह परमेश्वर के न्याय का। न्याय किसी इंसान के खिलाफ नहीं, ये संगठनों को नाश करना है। ये धरती पे जो संगठन बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये बुरे काम चल रहे हैं, इनको तो नाश करना है। और इसी आग के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मत्ती 24 का 21 और 22 में। पढ़ लो मत्ती 24 का 21 और 22। मत्ती 24:21-22। जी।
क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता।
देखो, इसका मतलब बच रहे हैं ना, बच रहे हैं ना उस क्लेश के समय में। ठीक है, तो जब परमेश्वर का न्याय आएगा इस संगठनों पे, बहुत सा नाश होगा, लेकिन उस नाश में से बचने वाले भी होंगे, जो कहाँ एंटर होंगे? तीसरे संसार में। ये पढ़ लो यकरिया, यकरिया 14:16, मलाकी से पहले वाला जो है, मलाकी से पहले, मलाकी नए नियम पुराने नियम का अंतिम चैप्टर, 14:16। ऐसा कलेश होगा ना कभी हुआ और ना कभी होगा, ये बहुत जल्दी।
जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं, वे महंगी और तलवार के द्वारा मार जाने।
14:16 आपकी पूरी बाइबल की प्रैक्टिस हो जाएगी खोलने की। अभी इधर उधर
वो हम थोड़ा लेख का रिवीजन करें ना, तो बहुत जल्दी मिलेगा।
वो करना है आपको, करना है। ये कह रहे हैं 14:16।
सूरत अशूरा। तब जितने लोग यरूशलम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे,
यरूशलम पर चढ़ाई करेंगे सब लोग और उनमें से जो बचे रहेंगे,
वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के युवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलम को जाया करेंगे।
देखो तो ये दूसरे संसार के अंत से के साथ शुरू होगा तीसरा संसार, जिसमें आएगा नया आकाश और नई पृथ्वी, धरती पे राज्य करने वाले बदल जाएंगे, आकाश में का अधिकार चलाने वाले बदल जाएंगे, ठीक है, उसमें बसेगी धार्मिकता और धरती पे लोग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि धरती पे लोग ही नहीं होंगे, ये तो बहुत गलत शिक्षा है, ये तो वचन नहीं बोल रहा है, ये देख लो साफ साफ वचन क्या बोल रहा है और हम क्या सुनते हैं और क्या प्रचार करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा संसार अंत होगा बहुत बड़े कलेश के साथ, जिसके कलेश के बारे पर उसको बोला है परमेश्वर का क्रोध, उसको बोला है आग, परमेश्वर का धार्मिक गुस्सा और न्याय इन संगठनों पे, बुराई के खिलाफ इन धरती के कामों को खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद शुरू होगा कौन सा संसार?
तीसरा
संसार। और तीसरे संसार का कोई अंत नहीं। तीसरे संसार का जैसे पहले दूसरे संसार के तीन भाग हुए ना, ऐसे ही तीसरे संसार का पहला युग है 1000 साल का युग।
तो
हाँ, प्रभु यीशु मसीह
जो परमेश्वर का चुना हुआ था,
या तीसरे संसार में या 1000 साल का राज्य, उसे बोलते हैं मिलेनियल एज, 1000 साल का युग। उसके बाद लिखा है आने वाले युग, पौलुस बोल रहा है आने वाले युग, और तीसरे संसार का कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। तो ये पढ़ लो दूसरा पत्रस 3:13। अब दूसरा संसार खत्म हो गया, अब हम तीसरे में जा रहे हैं।
पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आग देखते हैं जिसमें धार्मिकता बात करेगी।
नया आकाश नई पृथ्वी, आकाश का मतलब है नया आत्मिक राज्य, पृथ्वी का मतलब है देखी रूप से चलने वाला राज्य, ठीक है। इन दोनों में क्या बसेगी?
धार्मिकता।
पहले और दूसरे संसार की तरह, पहले और दूसरे
धार्मिकता बात करेगी,
पहले और दूसरे संसार की तरह अधार्मिकता नहीं बल्कि धार्मिकता, वो हमारे ब्रदर होंगे, ठीक है। तो किनके पास ये अधिकार होगा, ये पढ़ लो, जो आकाश है ना, आकाश, आकाश में कौन होगा, यानी आत्मिक रूप में अधिकार किसके पास होगा, पढ़ लो प्रकाशित वाक्य 20:4-6। हाँ, 4:6। प्रकाशित वाक्य 20:4-6।
फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उनकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे।
6 भी पढ़ लो।
जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, यह तो पहला पुरस्कार है। धन्य और पवित्र वह हैं जो इस पहले पुरस्कार का भागी हैं, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे।
तो ये प्रभु यीशु मसीह के साथ है राज्य, कौन कर रहा है? कलीसिया यानी उसका शरीर, 1000 साल का राज्य। सिसरा जब हम करते हैं ना उस कुछ भी रहा तो आप मुझसे पूछिए, ऐसे उनका भी ध्यान बढ़ जाता है, डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। तो ये वो समय होगा जब परमेश्वर की इच्छा इस धरती पे पूरी की जाएगी, जिस जिसकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में सिखाया ना, प्रभु यीशु मसीह ने तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जिस तरह
आसमान पर
ऐसे जमीन पे, जमीन पे इच्छा पूरी होगी परमेश्वर की, लोग धार्मिकता सीखेंगे और धार्मिकता से चलेंगे, यही है परमेश्वर की योजना। ठीक है, और फिर से पढ़ लो दूसरा तिमोथी 2:12, ये शायद आपको नहीं बताता कोई भी, ये जो अभी हम देखने जा रहे हैं।
दूसरा
2:12
यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा।
आजकल तो हम धीरज से सहने की क्षमता रखते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम थोड़ी सी आए सही, बस बस जल्दी जल्दी दूर कर दो प्रभु, बस नहीं सह सकते। यदि हम उसके साथ दुख सहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, ये शर्त है, यदि यदि तो समझते हैं ना। तो ये बहुत गहराई में इसकी बातें हम आने वाले दिनों में करेंगे, लेकिन ये तो हम बता रहे हैं कि नया आकाश किसका होगा, प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया, 1000 साल का राज्य होगा जो आकाश में राज्य करेंगे। ठीक है, और 1 कुरिन्थियों 7:31 में भी पढ़ लो,
और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना भूलें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते
हैं। दूसरे संसार के, पहले संसार के रीति और व्यवहार
बदलते
जाते हैं, और वो न्याय जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, जो न्याय आएगा वो बहुत बड़ा भयानक न्याय आएगा, वो पढ़ लो। याकूब उसके बारे में बताता है, याकूब 5:1-4 नए नियम में, याकूब 5:1-4 इब्रानिया के बाद।
तुम तो लोग, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवाने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है।
तो ये बहुत भयानक एक कंफ्लिक्ट होगा दो लोगों के बीच, एक तो अमीर और एक तो लेबर क्लास। लेकिन अभी दया है, अभी लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ अभी किसी कारण की वजह से, किसी योजना की वजह से ये नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो योजना, जैसे ही वो चीज पूरी हुई तो ये साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा, और इसकी तैयारी चल रही है अंदर ही अंदर। आप देख रहे हैं आजकल अमीर और अमीर होता जा रहा है, और गरीब तो खाना खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। ठीक है, 80 रुपए किलो टमाटर हो गए, हमारे जैसा बेचारा गरीब क्या करेगा। ठीक है, और सब्जियां इतनी महंगी हो रही हैं, सब कुछ देखो, ये तैयारी हो रही है बस। और इसको बाइबल में प्रकाशित वाक्य 16:16 में बोला है, अर्मेगदौन की लड़ाई, ये लड़ाई थी 3 बार बाइबल में हुई है, मेगिदो पहाड़ी के ऊपर, एक तो मीदी और किसके पर्शिया के बीच हुई है, सॉल और फिलिस्तीन के बीच हुई है, तो इसलिए इसको बोला आर्मेगेदोन, जिसके बारे में हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। और स्थिति उस समय की स्थिति तो अभी याकूब ने बता दी। पुराने नियम में भी देख लेते हैं, हिजकियल 7:19 में देख लो, सात का 19। अगर कोई बात नहीं समझ आती फिर से बोलूं, मैं फिर से बोलूंगा।
7:19 है ना
जी।
वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा, ना उनका पेट भरेगा, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है।
तो ये न्याय का दिन होगा, जिस दिन सोना चांदी अशुद्ध ठहरेगा, प्राण भी नहीं बचेंगे, बोलेंगे ले लो इसे सोना चांदी, नहीं चाहिए, तेरी जान चाहिए, देखो कैसी स्थिति होगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। और ये भी बोला कि अगर चुने हुए के कारण वो दिन कम नहीं किए जाते तो शायद कोई भी ना बचता। तो इसका एक छोटा सा नमूना 1890 में हुआ था, 1790 सॉरी, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी, फ्रेंच की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। इसमें क्या हुआ था, एक ऐसे ही भर के ना, जैसे वो होता है ना डस्टबिन वाला, जिसमें वो घास फूस डालते हैं ना, ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे एक लेके जा रहा बहुत सारा पैसा, बोलता ब्रेड दे दो, लेकिन ब्रेड नहीं मिल रही है। तो वो सिर्फ एक नमूना है, लेकिन असली तो अभी शुरू होना बाकी है। धरती को पीड़ा लग रही है, जैसे गर्भवती को पीड़ा लगती है ना, पेन आती है, लेबर पेन आती है, लेकिन गर्भवती तो डिलीवर तो नहीं करती ना बेबी, बस पीड़ा आती है जाती है, पीड़ा आती है जाती है, ऐसे पीड़ा लग रही है धरती को, पीड़ा लग रही है 2000 के बाद, ठीक है, बस वो क्लाइमेक्स अभी बाकी है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया है, ये देख लिया है कि बच जाएंगे बहुत से लोग और परमेश्वर के यरूशलम जाया करेंगे आराधना करने। तो ये तो है कौन सा, आकाश का अधिकार, धरती पे अधिकार किसका होगा, ये पढ़ लो मत्ती 8:11 में। जी,
और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे।
अब्राहम इस धरती पे देखो राजा अब्राहम बैठेगा, हाँ मतलब इनके साथ ये सारे जो भविष्यवक्ता भी रहे, क्योंकि इनको स्वर्ग की उदारता नहीं है। स्वर्ग की उदारता के लिए निकोदमस ने आके पूछा, प्रभु क्या करना होगा स्वर्ग में जाने के लिए, वो बोलते हैं जल और आत्मा से पैदा होना बहुत जरूरी है। तो जब जल और आत्मा से नहीं पैदा हुए तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे, तो इनकी स्वर्ग की उदारता नहीं है, इनकी कौन सी उदारता है, धरती की। परमेश्वर इनको धरती पे राजे बनाएगा, धरती पे ये राज्य करेंगे। जरा सोचो, अब्राहम राज्य करेगा, ओबामा नहीं, अब्राहम, सब अच्छा होगा, ये मनमोहन सिंह नहीं।
तो इसका मतलब ये बाइबल वाली बोलती है ना, जैसे अब्राहम बोला परमेश्वर के दाहिने बैठा होगा, वो ये स्वर्ग राज में बैठेगा,
यस धरती पे,
वो उस वाले में नहीं ना,
स्वर्ग में उनकी है, उनको उनकी स्वर्ग की उद्धारता नहीं है। उद्धारता के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि अभी आपने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, धन्य और पवित्र वो जो कितने पुनर्थान, पहले, अगर पहला है तो उसके बाद भी कोई होगा ना, नहीं तो ऐसा लिख देते ना, धन्य और पवित्र वो जो पुनर्थान के भागी हैं। पुनर्थान तो सबका होना है, लेकिन पहला है दूसरा है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पिछली बार भी एक वचन पढ़ा था, तेरे पिताओं के समान जगह तेरे क्या होंगे, पुत्र होंगे, जिनको तू धरती के क्या बनाएगा, बारिश राजे बनाएगा। ये पढ़ लो प्रकाश भजन संगीता 45:16, भजन संगीता 45:16। जी,
तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे जिनको तू सारी पृथ्वी पर हकीम ठहराएगा।
देखा, पृथ्वी पर राजे बनाएगा। इब्राहिम जब प्रभु यीशु मसीह आए थे, इब्राहिम तो प्रभु के बुजुर्ग थे, लेकिन जब पुनर्थान होगा तो वो उसके क्या हो जाएंगे, पुत्र, और उनको धरती के क्या बनाएगा, राजे। कई लोग स्टिल विश्वास नहीं करते, नहीं इब्राहिम तो मरा और जाके स्वर्ग में परमेश्वर के साथ बैठ गया, तो उसके लिए बहस नहीं करनी है, वचन दिखाना है, वचन। यूहन्ना 3:13 स्वर्ग में कोई भी प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हाँ जी, तो स्वर्ग में कोई नहीं गया, ना दानियल, ना मूसा, ना जोसफ, ना सैमसन, ना दाऊद, ना सुलेमान, कोई भी नहीं, ना नूह, ना इब्राहिम, ना इसहाक, ना याकूब, स्वर्ग में कोई नहीं गया,
वो सिर्फ आने वाले तीसरे स्वर्ग के लिए रिजर्व है।
ये आने वाले तीसरे संसार में धरती पे रहने वाले राज्य करने वाले लोग, स्वर्ग में नहीं, ठीक है। स्वर्ग में सिर्फ कलीसिया जाएगी, स्वर्ग में कलीसिया होगी, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह का शरीर। देखो कैसे होंगे नेता इस धरती पे, है ना, कि इब्राहिम राज्य कर रहा है, दाऊद, सुलेमान, नूह, दानियल। सुलेमान इतना समझदार था, आपको पता कितनी पत्नियां थी उसकी, बुद्धवान इतना, 1000 पत्नियां, 300 पत्नियां, 700 दूसरा, मतलब के क्या करते थे धरती के राजे, पता, आते थे, आप मेरी पत्नी के साथ, आप मेरी बेटी रख लो, इतना बुद्धिमान था। उसके बारे में दूसरा राजा में अगर हम पढ़े, एक जगह एक औरत जो उसके नाम की बड़ी महिमा सुनी और देखती, देखूं उसमें है भी कुछ बात या नहीं, जब आके देखा तो जो सुना था उससे भी ज्यादा चकित रह गई। अरे वाह यार, ये तो वाकई बहुत बहुत इस धरती, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला इस धरती का सबसे बुद्धिमान बुद्धवान।
अभी लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु सुलेमान वाली बुद्धि हमें दे,
सुलेमान वाली बुद्धि की प्रार्थना मत करो, मत करो, धरती का सबसे
बोलते हैं,
धरती का सबसे ज्यादा बुद्धिमान और मूर्ख भी वही, सिर्फ 69 साल की उम्र,
एक स्त्री के कारण
69 साल की उम्र में मर गया,
अपना भेद बना दिया,
ठीक है, अपनी पत्नियों के बात सुन के मंदिर बनवा दिए, एक ने मांगा दूसरी ने मांगा बनवा दिए, तो धरती का सबसे मूर्ख और धरती का सबसे बुद्धिमान वही है, ठीक है। तो इसलिए ये होंगे धरती पे राज्य करने वाले, पता नहीं इंडिया पे राज्य कौन करेगा, सुलेमान होगा या दाऊद होगा, पता नहीं कौन होगा, वो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर तय करेगा, है ना। तो ऐसे होंगे इस धरती पे राज्य करने वाले, और उस दिन होगा संसार का न्याय का समय। ये पढ़ लो प्रेरितों के काम 17:31,
क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा।
कितने दिन ठहरा है, एक दिन का मतलब 1000 साल, 1000 साल में राज्य करेगा, सब सुधार करेगा, कौन, प्रभु यीशु मसीह। और न्याय का दिन डरने का दिन नहीं है, जैसे न्याय आ रहा है तो पकर लो, बच लो, ऐसा होने वाला वैसा होने वाला, डर, न्याय का दिन खुशी का दिन होगा। ये पढ़ लो भजन संगीता 98:9, 8 और 9, भजन संगीता 98 का 89 आनंद का दिन होगा, आनंद का।
नदियां तालियां बजाएं,
हाँ जी,
पहाड़ मिलकर जय जयकार करें,
जय जयकार करें,
ये युवा के सामने हो क्योंकि वे पृथ्वी का न्याय करने वाले हैं।
पृथ्वी का जब न्याय करेगा, आगे भी पढ़ लो,
वह धर्म में धर्म से जगत का और सच्चाई से देश के लोगों का न्याय करेगा।
सच्चाई से देश के लोगों का न्याय, सच्चाई यानी परमेश्वर का वचन, तेरा वचन सत्य है। तो तालियां बजाओ, जय जयकार लगाओ, क्योंकि न्याय का दिन आ गया है। खुशी का दिन होगा, आनंद का दिन होगा, ना कि डरावना दिन होगा, भयानक दिन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह का जो मेन मकसद है, जो परमेश्वर की जो योजना यही है, ये पढ़ लो, पहला तिमोथी 2:3-4 हमने पहली क्लास में पढ़ा था, पहला तिमोथियस 2:3-4 सब मनुष्य को बचाना और सत्य के ज्ञान तक लेके आना। हाँ जी, पहला तिमोथियस 2:3-4
राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवित बिताएं, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है।
भाता भी है, देखो परमेश्वर सब उद्धार पाए। आगे पढ़ लो,
जो ये चाहता है कि सब मनुष्य
बचाए जाए,
उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले,
सारे मनुष्य जाति का उद्धार हो और वो पहचान ले उसके बाद के सत्य क्या है। सत्य परमेश्वर का वचन है, तेरा वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये वचन रास्ता सच्चाई और जीवन, सच्चाई यानी परमेश्वर का वचन शब्द। और दूसरा पत्रस 3:9 में भी पढ़ लो,
प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरना ये कि सबको मन फिराव का असर मिले।
सबको मन फिराव का क्या मिले,
अवसर
मिलेगा। अभी तीसरे संसार में सबको मन फिराव का अवसर, सबको जीवित किया जाएगा, बोला जाएगा सच्चाई सीखो और बुरे काम छोड़ो, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करो और जीवन प्राप्त करोगे। ठीक है, सबको मिलेगा एक एक अवसर। और बचाए जाने का मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग में ले जाएगा परमेश्वर, स्वर्ग में लेके जाने की परमेश्वर की योजना नहीं है, फिर धरती क्यों बनानी थी अगर ऐसा करना था तो, है ना। तो सबको तो सत्य का ज्ञान देना है, सत्य के ज्ञान से क्या होगा, छुटकारा। किससे, पाप से, पाप से छुटकारा होगा। और ये बात तो पढ़ लो हबक्कूक 2:14 में कि पूरी धरती परमेश्वर के ज्ञान से क्या हो जाएगी, भर जाएगी, जैसे समंदर पानी को भरते हैं। हबक्कूक 2:14 जी,
क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है।
तो ऐसी होगी स्थिति इस धरती पे जब सब लोग, सब कोई भी नाम पकड़ लो, उसामा बिन लादेन भी पकड़ लो, वो भी सच्चाई जानेगा, उसको भी अवसर मिलेगा मन फिराव का, वो भी सीखेगा परमेश्वर का वचन। ठीक है, तो बाइबल में जो उदारता है वो कुछ ऐसी है, ये ऐसी, इसको मैं समझाता हूं। आदम यहां पे एक संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन दिया परमेश्वर ने। आदम ने पहला कदम उठाया क्या, पाप। पाप से क्या आई, मौत। मौत से छुटकारा करवाया किसने, प्रभु यीशु मसीह ने, बराबर कीमत देके। सो मौत से बराबर कीमत देने की वजह से आया पुनरुत्थान। पुनर्थान होने के बाद सच्चाई सिखाई गई। सच्चाई सिखाई जाने के बाद क्या आई? पवित्रता। जब पवित्रता आ गई तो वापस हम कहाँ पहुंच गए? संपूर्ण जीवन, सब इंसान संपूर्ण हो जाएंगे। फिर सिर्फ संपूर्ण इंसान ही इस धरती पे रहेंगे सदा के लिए, मृत्यु नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी मृत्यु।
तो दूसरी बात सिखाया, उसके बाद वो बोलेगा स्वीकार करने के लिए, वहाँ पर वो धार्मिक शिक्षा मिलनी है, वो जानते हुए नहीं मानेंगे, वो हमेशा के लिए नष्ट कर
होंगे। ऐसे भी होंगे, पढ़ लो ये शायद 26:10 पढ़ लो।
अच्छा।
ऐसे भी होंगे
जो नकारेंगे उस टाइम पर, है ना।
यस, जिद्दी।
दस की
26:10
दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा, धर्म राज में भी वह कुटिलता करेगा और योगा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा,
फिर नहीं बख्शा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21:8, धर्म राज्य में भी नहीं सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:8,
परंतु दर्पों को और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों व्यभिचारियों सोनों और मूर्ति पूजकों सब चीजों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है।
देखो, ये दूसरी मृत्यु है जिसके बारे में हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे ये कैसी है, लेकिन जब ये सब हो जाएगा तो धरती की स्थिति क्या होगी, ये पढ़ लो 21:4 में।
इसी में,
हाँ,
21:4 में
जी,
वह उनकी आंखों से सब आंसू पहुँच डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी। पहली बात जाती है,
ना मृत्यु रहेगी, ना शोक ना विलाप, किसी की आंखों में आंसू नहीं होंगे, पुरानी सब काम पुरानी बातें खत्म हो गए। कितना सुंदर है परमेश्वर की योजना। ये धरती एक बगीचा होगी और मैंने बोला ना 1000 साल के युग के बाद ऐसे युग शुरू होंगे जिनका कोई अंत नहीं है, और सिर्फ पौलुस ने उसके बारे में सिर्फ बोला आने वाले युग। पढ़ लो 2:7,
वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए।
आने वाले समों लिखा है, इंग्लिश में लिखा एजेस टू कम, आने वाले युग। ठीक है, तो हमारा इस पढ़ाई का, इस क्लास का अंत आ गया है, लेकिन तीसरे संसार का कोई अंत नहीं है, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ये धरती एक बगीचा होगी, इस धरती पे रहने वाले संपूर्ण इंसान होंगे, इस धरती पे फिर बुराई ना होगी, सब अच्छा ही अच्छा होगा। इसी के साथ परमेश्वर ही सबको आशीष दे, आमीन।